एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी शख्सियत पर बात करने वाले हैं जिनका नाम दुनिया के लगभग 2 अरब लोग हर रोज लेते हैं।
हर रोज, लेकिन जिनके बारे में हमारी समझ अक्सर कह सकते हैं कि अधूरी या फिर बहुत
ध्रुवीकृत होती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पैगंबर मोहम्मद की।
और इस जटिल विषय को समझने के लिए हम आज एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए का सहारा लेंगे। ये नजरिया है विद्वान जोनाथन एसी ब्राउन का, उनकी किताब मोहम्मद के जरिए।
हाँ, और आज की दुनिया में तो ये और भी जरूरी हो जाता है ना, जहां मतलब जानकारी और गलत जानकारी दोनों ही इतनी तेजी से फैलती हैं।
एकदम। ऐसे में किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व को निष्पक्षता और गहराई से समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह सवाल की पड़ताल करती है कि 1400 साल बाद भी मोहम्मद की विरासत इतनी जीवंत, इतनी प्रभावशाली और हाँ, कभी कभी इतनी विवादास्पद क्यों है। तो चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं।
हाँ, लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे लगता है लेखक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मामले में लेखक का परिचय ही उनके काम को खास बना देता है।
सही बात है। जोनाथन एसी ब्राउन कोई आम इतिहासकार तो नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
मैंने भी जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। वे जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में इस्लामिक सभ्यता के प्रोफेसर हैं, एक जाने माने अकादमिक हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ है,
और वो मोड़ ही एक तरह से सब कुछ बदल देता है।
वे एक पश्चिमी अकादमिक हैं जो बाद में इस्लाम में परिवर्तित हुए।
अच्छा,
इसका मतलब है कि उनके पास दो नजरिए हैं। वो इस्लामी परंपराओं को एक अनुयायी की तरह अंदर से समझते हैं।
लेकिन साथ ही उन पर पश्चिमी ऐतिहासिक आलोचना की विधियों को भी एक विद्वान की तरह लागू करते हैं, और वो अरबी भी जानते हैं, तो वो मूल स्रोतों को सीधे पढ़ सकते हैं।
तो ये एक तरह का इनसाइडर आउटसाइडर नजरिया हुआ। मतलब वो एक पुल की तरह है जो अकादमिक दुनिया और आस्था की दुनिया दोनों को जोड़ते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा, उनका नजरिया न तो आंख बंद करके हर बात मानने वाला है और न ही सिर्फ संदेह के साथ हर बात को खारिज करने वाला, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।
तो फिर ऐसे लेखक की किताब का मुख्य विचार क्या है? ये सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के जीवन की घटनाओं का लिखा जोखा तो नहीं होगी?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये जीवनी से कहीं ज्यादा है। किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि मोहम्मद को समझने के लिए हमें दो काम एक साथ करने होंगे।
दो काम?
हाँ, पहला उन्हें 7वीं सदी के अरब के एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखना, और दूसरा ये समझना कि उनकी विरासत आज भी एक जीवंत और विकसित होती हुई शक्ति कैसे है। मतलब एक ऐतिहासिक इंसान और दुनिया के एक प्रमुख धर्म का केंद्र बिंदु, इन दोनों रूपों में उन्हें एक साथ कैसे समझें।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब हम जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं वो इस पर निर्भर करता है कि हम किससे पूछ रहे हैं।
जैसे एक कानून बनाने वाले से या एक सूफी संत से।
एकदम सही पकड़ा आपने। किताब यही दिखाती है कि सदियों से अलग अलग मोहम्मद उभरे हैं।
अच्छा।
हाँ, कानूनविदों के लिए वो एक बहुत बारीकी से कानून बनाने वाले हैं, सूफियों के लिए वे ईश्वर के प्रेमी, परफेक्ट मैन यानी इंसान कामिल हैं,
और जो आधुनिक सुधारक हैं
उनके लिए एक समाज सुधारक।
बिल्कुल, एक तर्कसंगत समाज सुधारक। किताब इसी यात्रा को दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की कहानी एक पूरी सभ्यता का खाका बन गई।
तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि मोहम्मद का उदय किसी पिछड़े अलग थलग रेगिस्तानी कबीले में नहीं हुआ था।
हाँ, और ये संदर्भ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मक्का उस समय एक कह सकते हैं ग्लोबल ट्रेड हब जैसा था, जहां अलग अलग संस्कृतियों और विचारों का संगम होता था।
और वो खुद भी एक व्यापारी थे, है ना?
हाँ, एक सम्मानित और सफल व्यापारी। उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए अल अमीन यानी विश्वसनीय कहा जाता था।
तो इस व्यापारिक और पूंजीवादी माहौल में उनका संदेश क्या था? वो क्या कह रहे थे?
उनका संदेश दोहरा था और उस माहौल के लिए आप कह सकती हैं क्रांतिकारी भी। पहला था एकेश्वरवाद, यानी सिर्फ एक ईश्वर की पूजा। ये मक्का के बहुदेववादी समाज के लिए एक सीधी चुनौती थी।
और दूसरा
जो शायद उस समय के लिए और भी ज्यादा विस्फोटक था, वो था सामाजिक न्याय। उन्होंने अमीरों की लालच, गरीबों और अनाथों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई।
तो ये सिर्फ एक धार्मिक बहस नहीं थी, ये तो सीधे सीधे मक्का के पावर स्ट्रक्चर को चुनौती थी।
बिल्कुल, ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का आवाहन था। मक्का की दौलत कुछ शक्तिशाली कुलों के हाथों में सिमटी हुई थी और मुहम्मद का संदेश उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। यही वजह है कि उन्हें और उनके शुरुआती अनुयायियों को, जिनमें कई गुलाम और कमजोर लोग थे, भयानक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
और ये उत्पीड़न इतना बढ़ गया कि उन्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसे किताब में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बताया गया है, हिजरत, मक्का से मदीना जाना।
हाँ, और ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था।
नहीं, ये उनकी भूमिका का पूरी तरह से बदलना था, है ना?
एकदम, मक्का में वे एक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के नेता थे जो उपदेश दे रहे थे। मदीना आकर वे सिर्फ एक उपदेशक नहीं रहे, वो एक समुदाय के नेता, एक राजनेता।
एक जज, एक सैन्य कमांडर, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी हो गई।
बिल्कुल, और यहीं पर किताब मदीना के संविधान का जिक्र करती है जो सुनने में ही बहुत आधुनिक लगता है।
हाँ, ये क्या था?
यह दस्तावेज मतलब अपने समय से बहुत आगे था। ये एक ऐसा सामाजिक समझौता था जिसने मदीना के अलग अलग समूहों को,
जैसे मुसलमान, यहूदी, कबीले।
हाँ, मुसलमान, यहूदी कबीले और दूसरे अरब गुटों को एक साथ एक समुदाय, जिसे उम्मा कहा गया, में बांधा। ये आपसी रक्षा और सहयोग पर आधारित था।
तो एक तरह से ये एक बहुलतावादी समाज बनाने की कोशिश थी।
कह सकते हैं उस संविधान ने ये स्थापित किया कि यहूदी अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे और मुसलमानों के साथ मिलकर शहर की रक्षा करेंगे।
7वीं सदी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात। उस दौर में जहां पहचान खून के रिश्ते से तय होती थी, वहां ये एक साझा नागरिकता जैसी बात थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी थे।
लेकिन मदीना का दौर हमेशा शांतिपूर्ण तो नहीं था। किताब युद्धों और मदीना के कुछ यहूदी कबीलों के साथ हुए संघर्ष जैसे विवादित विषयों पर भी बात करती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है।
हाँ है, और लेखक इन मुश्किल सवालों से बचते नहीं है। उनका मुख्य तर्क ये है कि इन घटनाओं को 7वीं सदी के क्रूर कबीलाई राजनीति के संदर्भ में देखना जरूरी है।
मतलब उस जमाने के नियम ही अलग थे, हमें इसे आज के नैतिक पैमानों से नहीं देखना चाहिए।
एकदम, किताब हमें याद दिलाती है कि वो जीवन मरण का सवाल था। गठजोड़ बनते बिगड़ते थे और विश्वासघात का मतलब अक्सर पूरे कबीले की तबाही होता था। लेखक का उद्देश्य किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि
बल्कि बल्कि ये समझाना है कि उस वक्त के किरदार किन दबावों और मजबूरियों में काम कर रहे थे।
बिल्कुल, वो हमें एक इतिहासकार की तरह सोचने पर मजबूर करते हैं।
अच्छा, और फिर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी विरासत इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? अक्सर तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद आंदोलन बिखर जाते हैं।
अच्छा सवाल है, और यहीं पर सुन्ना और हदीस का विचार आता है जो किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सुन्ना और हदीस?
जी, उनके अनुयायियों ने उनकी कही हर बात और उनकी किए हर काम को याद रखा और बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया। इन बातों और कामों के रिकॉर्ड को हदीस कहते हैं।
और इन सभी हदीसों का संग्रह सुन्ना कहलाया?
हाँ, सुन्ना का मतलब है रास्ता या तरीका, मतलब जीने का पैगंबरी तरीका। अगर कुरान आपको बताता है कि क्या करना है, जैसे न्याय करो, दया करो,
तो सुन्ना आपको दिखाता है कि उसे कैसे करना है।
एकदम सही, ये एक व्यवहारिक गाइड बन गया।
तो ये एक तरह का हाउ टू गाइड है।
हाँ,
किताब में ऐसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, वो व्याकरण वाली।
हाँ, और वो एक बेहतरीन उपमा है। सुन्ना इस्लामी संदेश का व्याकरण है।
इसका क्या मतलब है?
नहीं, पैगंबर का जीवन आपको व्याकरण सिखाता है कि उन शब्दों और सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल करें, उन्हें कैसे एक दूसरे से जोड़ें ताकि एक सार्थक और जीने लायक जिंदगी बन सके।
अच्छा, मतलब सिद्धांत को अमल में लाकर दिखाना।
जी,
तो अगर इस पूरी चर्चा को देखें तो कुछ मुख्य संदेश या थीम उभर कर सामने आते हैं। पहला तो यही है कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को, खासकर इतने जटिल व्यक्तित्व को, सिर्फ संत या खलनायक के खांचे में नहीं रखा जा सकता।
बिल्कुल, असलियत हमेशा ज्यादा जटिल और न्यूएंस्ड होती है। दूसरा बड़ा संदेश है कि मोहम्मद की विरासत स्थिर नहीं है, ये गतिशील है। ये पत्थर में लिखी कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक 1400 साल पुरानी बातचीत है जो आज भी जारी है।
इसका कोई उदाहरण? जैसे?
जैसे भारत में ही देखिए, यहाँ की सूफी परंपरा जिस तरह से मोहम्मद को एक आध्यात्मिक प्रेमी के रूप में देखती है, वो कई अन्य कट्टरपंथी व्याख्याओं से बहुत अलग है। या फिर 20वीं सदी के मुस्लिम सुधारक,
जो उन्हें एक तर्कसंगत समाज सुधारक रूप में देखते थे।
हाँ, जो शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये विविधता ही इस विरासत की जान है।
और तीसरा संदेश जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं वो है ऐतिहासिक संदर्भ का महत्व।
हाँ, और एक और संदेश जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का संगम। मुहम्मद की विरासत में आध्यात्मिकता और राजनीति अलग अलग नहीं है। मदीना में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना भी उतना ही आध्यात्मिक कार्य माना गया जितना कि प्रार्थना करना। ये एक समग्र दृष्टिकोण है।
किताब में एक और विचार है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, खासकर जब हम डेनमार्क के कार्टून जैसे विवादों के बारे में सोचते हैं। ब्राउन कहते हैं कि ये विवाद सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी बनाम धर्म का मामला नहीं है।
हाँ, वे कहते हैं कि ये शक्ति, सम्मान और इतिहास की लड़ाई है। ये बहुत गहरी बात है।
इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि कई मुसलमानों के लिए, खासकर उत्तर औपनिवेशिक दुनिया में, पैगंबर का अपमान केवल एक तस्वीर का अपमान नहीं है, यह उनके पहचान, उनके इतिहास और उनके आत्मसम्मान पर एक प्रतीकात्मक हमला है।
मतलब ये प्रतिक्रिया उस ऐतिहासिक घाव से आती है जहां उन्हें लगा कि उनकी संस्कृति और उनके प्रतीकों का सम्मान नहीं किया गया।
बिल्कुल, ये लड़ाई बहुत गहरी है और इसका संबंध इतिहास के शक्ति असंतुलन से है, इसलिए प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है। ये सिर्फ एक कार्टून के बारे में नहीं है, ये सदियों के इतिहास, अपमान और सम्मान की लड़ाई के बारे में है।
तो फिर इन सब विचारों को हम आज के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? एक तो साफ है, ये हमें दूसरे धर्मों और संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।
निश्चित रूप से, जब हम किसी के आदर्शों को गहराई से और बिना पूर्वाग्रह के समझते हैं तो रूढ़िवादी धारणाएं टूटती हैं।
और नेतृत्व के लिए भी इसमें एक सबक है ना?
बहुत बड़ा सबक है, मदीना में एक इतने विविध समुदाय का नेतृत्व करना, मतलब जिसमें अलग अलग धर्मों और कबीलों के लोग थे। ये आज के किसी भी बहु सांस्कृतिक समाज या कंपनी के लीडर के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकता है
कि कैसे मतभेदों का सम्मान करते हुए साझा लक्ष्य बनाए जाएं
और एक साझा पहचान घड़ी जाए।
बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये हमें इतिहास को देखने का एक नया तरीका भी सिखाता है। अपने नायकों को सिर्फ पूजने या खारिज करने के बजाय उन्हें उनके समय और संदर्भ में समझना ज्यादा जरूरी है।
हाँ, और एक व्यक्तिगत स्तर पर भी इसका महत्व है। मोहम्मद की कहानी जैसा कि ब्राउन दिखाते हैं, वो धैर्य, लचीलेपन और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की कहानी है। ये किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है।
तो अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, मेरे लिए जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी वो ये कि मोहम्मद की विरासत कितनी जीवंत और गतिशील है। मतलब ये कोई संग्रहालय में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक 1400 साल पुरानी बातचीत है जो आज भी हमारे चारों ओर अलग अलग रूपों में जारी है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ब्राउन का दृष्टिकोण रहा है, ऐतिहासिक आलोचना और आस्था के प्रति सम्मान का संतुलन। ये दिखाता है कि गहरी अकादमिक जांच और सच्चा सम्मान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। हम किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं बिना उसका अनादर किए। और शायद ये चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर इतिहास के इतने बड़े व्यक्तित्व की विरासत भी लगातार बदलती और व्याख्यायित होती रहती है तो हमें अपनी परंपराओं और ऐतिहासिक नायकों को कैसे देखना चाहिए? क्या वे संग्रहालय में रखी मूर्तियां हैं जिन्हें बस पूजा जाना चाहिए, या एक जीवंत संवाद का हिस्सा है जिस पर हम आज भी बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।